यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अध्याय 8 पर नई दिल्ली में 8 जून 1997 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज श्रीमद् भागवत के बजाय हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के कई श्लोक पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं और इन पर हम थोड़ी व्याख्या करेंगे। ये मध्य लीला के 8वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद रॉय का बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। चैतन्य महाप्रभु तो आप जैसे जानते हो परम भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्णा नाहे आनियम, और रामानंद रॉय उन्हें शास्त्रों में अर्जुन का अवतार माना जाता है। और रामानंद रॉय भौतिक दृष्टि से तमिलनाडु के गवर्नर थे, पर वो थे बहुत प्रिय भक्त परम भगवान श्री कृष्ण के। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कहा गया था कि आप दक्षिण भारत जब जाओगे वहां एक बहुत प्रिय भक्त से मिलोगे जिनका नाम है रामानंद रॉय। और इस 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद रॉय उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप शायद ये जानना चाहोगे कि क्या कारण है कि अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं कि वो अपने भक्त से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। अक्सर तो हम देखते हैं कि भक्त भगवान से प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं, ठीक है। जैसे अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे भगवद गीता में और भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उसी प्रकार शास्त्र में हम देखते हैं कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं। पर यहां हम देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका भक्त उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रामानंद रॉय तो भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं, तो भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भक्त ये चाहता है कि वह भगवान का गुणगान बढ़ाए, भगवान ये चाहते हैं कि वह अपने भक्त की महिमा को बढ़ाए। जैसे कि भागवत के प्रथम स्कंध में हम भीष्म देव जी की शिक्षा के विषय में पढ़ते हैं। जब भीष्म देव को ये वर प्राप्त हुआ था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार इस जीवन को त्याग सके, अगर हमें उस वो आपको और हमें वो वर प्राप्त हो तो शायद हम कभी नहीं त्यागने का प्रयास करें। तो भीष्म देव जी जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज राज्य पर बैठ गए हैं, तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि अब संसार त्यागने का समय आ गया है। तो उनके त्यागने के समय परम भगवान स्वयं वहां पहुंचे थे। अपने सारे भक्तों के साथ, अनेक देवता देवियों के साथ। और भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम पूछो भीष्मदेव से कि जीवन का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। और फिर भीष्मदेव ने भगवत धर्म के विषय में भगवान के उपस्थिति में या भगवान उपस्थित होते हुए उन्होंने उन्हें यह शिक्षा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमेशा भक्त की महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें पता लगा कि नित्यानंदा के ऊपर, नित्यानंदा के माथे पर एक पत्थर फेंका था मदाई ने, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे अपने सुदर्शन चक्र के साथ, पर उन्होंने जगाई मदाई को बचाने का ये अवसर किसे दिया? नित्यानंदा को। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बचा सकते थे उन्हें, पर उन्होंने नित्यानंदा का गौरव बढ़ाया। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने यह हरि नाम का प्रचार तो किया भारत में, पर सारे विश्व में प्रचार करने का अवसर किसे दिया? श्रील प्रभुपाद को। तो इसी प्रकार भगवान जो है हमेशा प्रयास करते हैं कि वो भक्त की महिमा को बढ़ाएं, और भक्त प्रयास करता है कि वो भगवान की महिमा को बढ़ाए। ये जो वार्तालाप हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी और रामानंद रॉय का, ये हुआ था गोदावरी नदी के किनारे। भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं, जैसे प्रभुपाद जी के शताब्दी के लिए शास्त्र तीर्थ जल से प्रभुपाद को स्नान करवाया था। और हमारे सेंटेनियल डिपार्टमेंट के भक्त 4-5 साल गए और उन्होंने 1108 पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया। तो भारत में ऐसे कई पवित्र नदी हैं, हाँ, इन सब के विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने एक किताब भी छापी है सेंटेनियल ने, जिसमें शास्त्र तीर्थ जल, जिस नदियों से ये जल इकट्ठा हुआ था उनके विषय में ज्ञान है। आजकल हम देखते हैं कि ये पवित्र नदियों के किनारे भी इंद्रिया तृप्ति वगैरह की सुविधा बढ़ाई जा रही है। जैसे जगन्नाथ पुरी में एक बहुत ही सुंदर बीच है, जहाँ नदी है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी रोज जाते थे स्नान करने के लिए, और जहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास के शरीर को उठाकर वहां स्नान करवाया। तो हमारे वैष्णव भक्त जो हैं वो वहां जाते हैं उसे तीर्थ के स्थान मानकर। पर आजकल बड़े बड़े व्यापारियों ने वहां 5-स्टार होटल, शराब सब बीच के किनारे शुरू कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है। तो ये जो वार्तालाप हुआ था चैतन्य महाप्रभु जी और रामानंद रॉय का, ये हुआ था गोदावरी नदी के किनारे। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रश्न पूछे हैं और रामानंद रॉय ने उत्तर दिया है। तो एक श्लोक शायद बोर्ड, हाँ, ब्रोड में लिखा है, इसको आप दोहराइए। प्रभु कहे कौन वेद्य विद्यमाद्य सारा, राय कहे कृष्ण भक्ति वीन विद्या नहीं आरा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानांजना शलाक्या चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयां ददाति स्वापदंतिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां सग्राजतं सहगना रघुना तन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा प्रभु कहे कौन विद्या विद्या माध्य सारा राय कहे कृष्ण भक्ति बीन विद्या नहीं आरा। चैतन्य चरितामृत के श्लोक सरल बंगला भाषा में हैं, भागवतम के श्लोक संस्कृत भाषा में हैं, पर कई श्लोक चैतन्य चरितामृत में संस्कृत भाषा में भी हैं। तो ये था चैतन्य महाप्रभु जी का सबसे पहला प्रश्न। अवसर पाकर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? और रामानंद रॉय ने क्या कहा, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान है ये सब ज्ञानों का राजा है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भौतिक शिक्षा के द्वारा हम यही ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा आप अपने असली स्वरूप को समझ पाते हो। हम ये नहीं कह रहे कि भौतिक विद्या प्राप्त नहीं करनी चाहिए, आखिर हम सभी भौतिक विद्या का उपयोग तो करते हैं भगवान के प्रचार में, भगवान की सेवा में। असली अर्थ यह है कि भौतिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या अवश्य ही प्राप्त, नहीं तो इस भौतिक विद्या का कुछ खास महत्व नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के सिर में अगर एक भारी पगड़ी हो तो वो जल्दी डूब जाएगा, तो उसी प्रकार अगर भौतिक विद्या का उपयोग नहीं किया जाए भगवत सेवा में तो ये बड़ी भयंकर हो जाती है। जैसे कि आजकल विज्ञानी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनेक सुविधाएं बना ली हैं जिसके द्वारा आप लोग नुकसान दे सकते हो, डिस्ट्रक्शन, देशों को नष्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे विज्ञानियों ने ये A-47 रिवॉल्वर भी बना दिया है। तो अब भौतिक विद्या का दुरुपयोग किया जा रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरणागत नहीं होते। कौन है ये चार प्रकार के व्यक्ति? न मम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदे अंते नधा माया पड़ता ज्ञान अश्रम भवान आश्रित माया पड़ता ज्ञान। इनसे उन व्यक्तियों का वर्णन है जिनके पास भौतिक ज्ञान तो है, भौतिक शिक्षा है, पर भौतिक शिक्षा का ही वो दुरुपयोग कर रहे हैं। किस लिए भौतिक शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं? इस कारण वो भगवान के शरणागत नहीं होते। आज भौतिक समाज में भी हम यही देखते हैं, जिनके पास भौतिक शिक्षा है वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास सब प्रश्नों का उत्तर है, और वो भगवान की शरण नहीं लेते। असल में ये जो चैतन्य महाप्रभु जी और रामानंद रॉय का वार्तालाप जो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ा सुंदर अध्याय, बड़ा सुंदर ज्ञान है। और रामानंद रॉय ने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है, हम इन प्रश्नों का उत्तर का उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? प्रचार के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने वैसे श्लोक पूछे हैं, ऐसे वैसे प्रश्न पूछे हैं जो कोई कोई साधारण व्यक्ति पूछता है। और रामनंदन राय ने बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं इन प्रश्नों का। तो चैतन्य महाप्रभु जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया है कि सबसे अवश्य शिक्षा या ज्ञान वो है जिसके द्वारा हम भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकें, और उसके बिना सारा ज्ञान अधूरा है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि आप 1-0 लिखो, 2-0 लिखो, 10-0 लिखो, इनका कुछ महत्व नहीं है, पर अगर आप साथ में 1 जोड़ दोगे तो फिर इन जीरों की कुछ कदर रहेगी। तो उसी प्रकार भौतिक विद्या, भौतिक शिक्षा, भौतिक ज्ञान का हम जब उपयोग कर सकते हैं, अगर हम इसे कृष्ण भक्ति या भगवान की सेवा में उपयोग करें। आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवतम के सातवें स्कंद के नवदा भक्ति के 2 श्लोकों का उन्होंने वर्णन किया है। प्रहलाद महाराज जी के पिता ने उनसे पूछा था, बेटा ये बताओ क्या तुम स्कूल में क्या सीख कर आए हो। प्रहलाद महाराज ने तो आध्यात्मिक शिक्षा अपने माता के घर में प्राप्त कर ली थी नारद मुनि जी के द्वारा, पर उनके पिता का ये प्रयास था कि वो भौतिक शिक्षा प्राप्त करें। प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे थे कौन? शुक्राचार्य के 2 बेटे, और उनको ये आदेश दिया गया था कि तुम कृष्ण भक्ति के ज्ञान को भुला दो। उसके बाद को ये चिंता थी कि बेटे की रुचि है भक्ति में। तो एक दिन बेटे ने पूछा, बाप ने बेटे से पूछा, ये बताओ कि आज तुम स्कूल में क्या पढ़कर आए हो। बाप तो था दुष्ट बुद्धि का, और जब भी उसने अपने बेटे को अपने गोद में बिठाया और बड़े प्रेम से पूछा, बताओ आज तुम स्कूल में क्या सीख कर आए हो। और प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने इन 2 श्लोकों का वर्णन किया जिनको प्रभुपाद जी ने जिनका वर्णन किया है इस श्लोक के तात्पर्य में। शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचमनम दर्शन सख्यम आत्मनिवेदन। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, हे पिता, ये जो नवदा भक्ति का ज्ञान है ये है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। और प्रहलाद हिरण्य काशिप को इतना क्रोध आया ये सुनने पर कि उन्होंने अपने बेटे को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो ये नवदा भक्ति का जो ज्ञान है उसका हम सबको उपयोग करना चाहिए। गोविंद दास जी कहते हैं बाजा हुरे मन प्रार्थना में कि ये जो जीवन है किसी समय में समाप्त हो सकता है, पर हमें किसी न किसी रूप से हरि की शरण लेनी चाहिए। और हरि की शरण हम कैसे लेंगे? गोविंद दास जी इन अवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी इन अवधा भक्ति का वर्णन करते हैं और हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो हर व्यक्ति यश पाना चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि सब उसे आदर दें। लोग प्रयास करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए, किस लिए? सब यशस्वी बनना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रश्न है, समस्त यशस्वी कार्यों में सर्वाधिक कौन सा है? और इन्होंने क्या कहा? वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वो ही सर्वाधिक यह जाए, वो है असली यशस्वी व्यक्ति। जैसे कि भारत में अनेक धनी व्यक्ति हैं और हर देश में अनेक धनी व्यक्ति हैं, पर एक देश के धनी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। चाणक्य पंडित जी ने कहा है कि कोई धनी व्यक्ति लोग उसे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में ही जानेंगे, पर भगवान का जो भक्त है उसे लोग हर कोने में जानते हैं। जैसे कि आज आप पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ, लोग प्रभुपाद को जानते हैं। कोई दो हफ्ते पहले हम एक भक्त के साथ न्यूयॉर्क के एक सड़क में किसी को मिलने जा रहे थे, तो एक अफ्रीकन आदमी आया, कोई अफ्रीका के छोटे देश से, हमने उस देश का नाम भी नहीं सुना था कभी, तो हमारे पास आके कहने लगा, मैं प्रभुपाद को जानता हूं। खुद ही उसने कहा। हमने कहा, प्रभुपाद को कैसे जानते हो? कहते, मैंने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है अपने छोटे देश में। तो अगर व्यक्ति यशस्वी बनना भी चाहे तो उसे यशस्वी बनने का साधन क्या है? वो है कि वो भगवान का भक्त बने। भगवान के भक्त बनने से आप असली यश को प्राप्त कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु को रामानंद रॉय ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बने, अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि हम यशस्वी बनना चाहते हैं। आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि भागवत में तो अहित की भक्ति पर बल दिया गया है। हम इस भावना से भक्ति को स्वीकार नहीं करते कि हम यशस्वी बने या धनी बने या बड़े प्रसिद्ध बने या हमारे हाथ में बहुत ताकत आए या हमें कोई ऊंची गद्दी मिले, नहीं। पर कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक समाज में सब प्रयास करते हैं यशस्वी बनने के लिए, बड़े मशहूर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए। कोई व्यक्ति किसी देश का नेता बनता है, राष्ट्रपति बनता है, वो यही चाहता है कि वो ऐसा कार्य करे कि लोग उसको याद करें। पर जो भगवान का भक्त है वो है असली यशस्वी व्यक्ति, और जो भगवान का भक्त है उसे लोग सारे विश्व में जानते हैं। तो अनेक श्लोकों के द्वारा प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में चार पन्नों का तात्पर्य लिखा है, और इन चार पन्नों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक श्लोकों के द्वारा एक विषय को स्थापित कर रहे हैं। क्या? जो कि रामानंद रॉय ने कहा है कि जो भगवान का भक्त है वो है असली यशस्वी व्यक्ति। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप से भगवान के असली भक्त बने, और यही माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने का, और यही है जीवन का असली लक्ष्य। तो अगला प्रश्न ये था कि संपत्ति वानों में सर्वोच्च कौन है? तो हर व्यक्ति संपत्तिवान बनना चाहता है। हर व्यक्ति सारे विश्व में, विश्व के आप किसी कोने में जाओ, हर व्यक्ति संपत्तिवान बनना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि सब संपत्तिवानों में सबसे उत्तम कौन है, और के रामानंद रॉय ने क्या उत्तर दिया? जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके हृदय में भगवत प्रेम हो। संपत्ति के द्वारा आप केवल अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी अच्छी कथा है, 11वें स्कंद में। एक बहुत संपत्तिवान व्यक्ति था, बहुत धनी, पर साथ में वो व्यक्ति बहुत कंजूस भी था। वो ना तो इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेता था, ना किसी को अपनी संपत्ति खर्चने देता था। उसकी पत्नी उससे आकर पैसे मांगती थी, कहता था पैसा नहीं है। बच्चे मांगते थे, बच्चों को भी वो पैसा नहीं देता था। कोई भी मांगता था, रिश्तेदार, किसी को पैसा नहीं देता था। पर था बहुत धनी, ये भगवत की कथा है। तो बहुत धनी व्यक्ति था, पर था कंजूस। पर बचपन में उसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, जैसे अजामिल को बचपन में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, फिर वो बुरी संगत में गिर गया। तो ये जो धनी व्यक्ति था, सब उसके दुश्मन बन गए। भगवत के 11वें स्कंद में कहा गया है कि कि धनी व्यक्ति के अनेक दुश्मन होते हैं। हम तो सोचते हैं कि सब उनके बंधु होते हैं, पर दुश्मन भी होते हैं। क्यों? हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि उसका धन कैसे छीना जाए। सरकार भी यही सोचती है हम उसकी धन को टैक्स के रूप में कैसे ले। जो चोर हैं वो भी धनी व्यक्ति के पीछे जाते हैं, गरीब के पीछे तो नहीं जाता कोई। गरीब व्यक्ति तो अपना दरवाजा खुले रख कर सो जाता है, पर धनी व्यक्ति को चौकीदार रखने पड़ते हैं, कुत्ते रखने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दीवार बनानी पड़ती है वगैरह। तो ये इस धनी व्यक्ति के कई दुश्मन थे, साथ में घर वाले भी दुश्मन बन गए, क्योंकि वो किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था खर्चने के लिए। तो एक दिन उनकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब मिलकर सब ने उस धनी व्यक्ति के सारे धन को लूट लिया और वो धनी व्यक्ति भिखारी बन गया। सारा धन उसको उन्होंने छीन लिया, साथ में चोरों ने, सरकार ने, सब ने मिलकर सारे धन को छीन लिया। जब उस धन को चुराया सब ने मिलकर, आरंभ में तो ये धनी व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, पछताने लगा, मेरा सारा धन छीन लिया सरकार ने और ये चोरों ने, पत्नी ने, बच्चों ने, सब ने। तो पछता रहा था, दुखी हुआ, पर उस दुख के द्वारा उसमें त्याग की भावना आ गई और वो इतने अपने जीवन को मुकुंदा के चरणों में अर्पण कर दिया और वो भगवान की भक्ति में बिल्कुल जुड़ गया, लीन हो गया। फिर वो भगवान की भक्ति में लीन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर रहा था, दिन रात भगवान का भजन कर रहा था। जहां वो जाता था लोग उसे ताना देते थे, कहते थे अभी तुम भिखारी बन गए क्योंकि तुम्हारा धन सब धंधा फेल हो गया और तुम्हारा धन छीन लिया लोगों ने, इसलिए तुम भिखारी बन गए। जब भी वो सहने लगा, बिल्कुल सहनशीलपन का उदाहरण था। जब वो खाने जाता था कुछ तो बच्चे आकर वहां पेशाब करते थे, उसको छेड़ते थे, ताना मारते थे। जब भी वो भगवान के चरणों में ही लीन था, बिल्कुल घबराया नहीं। इसी प्रकार भागवत में एक और उदाहरण है। एक वैश्या थी पिंगला नाम की, उस वैश्या ने अपने आप को बड़ा सजाया था लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर उसे कोई एक दिन की राख नहीं मिला। जो व्यक्ति सामने से गुजरता था वो सोचती थी कि ये व्यक्ति मेरा ग्राहक बनेगा, पर कोई ग्राहक नहीं बना। तो जब वो रात को घर लौटी, पहले तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, क्या सारा दिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला, कुछ कमाई नहीं हुई। पर उस अफसोस के द्वारा उसके हृदय में त्याग की भावना बढ़ी, फिर वो भगवान के शरणागत हो गई। उसी प्रकार ये जो धनी व्यक्ति था वो एक अवंती देश का ब्राह्मण था, अवंती देश बिहार में प्राप्त होता है शायद, तो वहां का ब्राह्मण था। फिर उसने भगवान का अनेक गुणगान किया अनेक श्लोकों के द्वारा और एक मंत्र की रचना की, जिसकी रचना हर सन्यासी करता है ज्ञात्री मंत्र करने से पहले। का प्रश्न ये था कि सब संपत्ति वानों में सबसे प्रथम ऊंचे कोटि का कौन सा है? तो जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति की भावना है वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट रहता है हर स्थिति में। हम सोचते हैं कि अगर हमें धन प्राप्त हो जाए तो हमारी सब समस्या हल हो जाएगी, नहीं। आप अनेक धनी व्यक्तियों से मिलिए, सबकी चिंता है, सबके पास चिंता है, पर अगर आप किसी न किसी रूप से भगवान की शरण, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो ही हम संतुष्ट होंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृतम में कथा, चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त थे जिनका नाम था खोल बेचा श्रीधर। भौतिक दृष्टि से तो वो बहुत ही गरीब थे, सब एक ही धोती थी उनके पास, उसमें भी अनेक छेद थे, पर भगवान की भक्ति हरि नाम में इतना आनंद प्राप्त कर रहे थे कि एक समय जब चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें कहा, मांगो मेरे से क्या सुविधा चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे कोई सुविधा देना चाहते हो, कोई वर देना चाहते हो, तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपका स्मरण कर सकूं और आपका साथ प्राप्त कर सकूं। तो भक्तों को ये भूलना नहीं चाहिए कि असली संपत्ति है भगवत प्रेम, और वो असली संपत्ति को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि सब प्रकार के दुखों में सबसे ज्यादा कष्टदायक कौन सा दुख है? तो अगर आप साधारण व्यक्ति से पूछो ये प्रश्न पूछोगे तो क्या उत्तर देगा कि हमें धन नहीं प्राप्त हो रहा, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही वगैरह, तो हम बड़े दुख की स्थिति में हैं। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भक्तों की संगति नहीं मिलना ये सबसे अधिक कष्ट की स्थिति है भक्त के लिए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग, लाभ मात्र का अर्थ है एक सेकेंड का 14वां हिस्सा, एक सेकेंड के 14वें हिस्से को आप माप भी नहीं सकते अपने घड़ी के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा है किस प्रकार का कष्ट सबसे अधिक है, और उन्होंने क्या कहा रामनंद रॉय ने, कृष्णा भक्तों से जुदा रहना ये कष्ट सहना एहसान नहीं है। तो कृष्णा भक्तों की संगत में रहना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो, ये बहुत अवश्य है, क्योंकि कृष्णा भक्तों की संगत के द्वारा भक्ति की भावना बढ़ती है, और कृष्णा भक्तों की संगत से जुदा हो तो भक्ति का जो उत्साह है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी हमें मौका मिले भक्तों की संगत का लाभ उठाने का, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। कृष्णा भक्तों की संगत हम कैसे प्राप्त करते हैं? कीर्तन के द्वारा, एक साथ बैठकर भगवान का उपदेश सुनना भगवतम के द्वारा, एक साथ बैठकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना, एक साथ भागवतम के 4वें स्कंद में ध्रुव महाराज जी को नारद मुनि जी कहते हैं कि तीन प्रकार की संगत हमें प्राप्त हो सकती है। एक है उन भक्तों के साथ जो कि हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, दूसरा उन भक्तों के साथ जिनका ज्ञान हमारे समान है, तीसरा जो कि हमारे से जिनके पास हमारे से कम ज्ञान है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि जब हमें उन भक्तों की संगत का मौका मिले जिनका हमारे से अधिक ज्ञान है, तो हमें उसके द्वारा प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा हम आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन कर सकेंगे, और हमें उस संगत के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति वगैरह को वश में ला सकेंगे। जब आपको उन भक्तों की संगत मिले जो आपके समान हो, तो भक्त को प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में भक्त कृष्ण कथा कर सकता है और कृष्ण भगवान का गुणगान कर सकता है। और जब आपको वैसा कोई भक्त मिले जिसके आपसे कम ज्ञान है जिसके पास, तो हमें दयालु हो जाना चाहिए, उसको फिर हमें दया दिखानी चाहिए। और आप दया कैसे दिखाओगे? ये असली ज्ञान देकर। अगर आप केवल कोई भौतिक सुविधा दो किसे, तो वो असली दया नहीं है। असली दया जब है, असली दयालु व्यक्ति वो है जो कि लोगों को ये ज्ञान देता है। क्या ज्ञान? कि जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वो है असली दयालु व्यक्ति। तो भक्तों की संगत का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक समय एक भक्त था जिसने प्रभुपाद जी से कहा कि मैं भक्तों की संगत में नहीं रहना चाहता, मैं एकांत में रहकर हरिदास ठाकुर के समान जप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया बहुत, नहीं नहीं तो मंदिर में ही रहो, भक्तों के साथ रहो। उस भक्त ने हर भक्त के इतने दोष समझ लिए थे कि उसने कहा कि मैं किसी मंदिर में नहीं रह सकता। खैर, प्रभुपाद जी ने उसे इजाजत दे दी और मायापुर में वो जाकर रहने लगा बिल्कुल एकांत में। पर थोड़े दिनों के बाद वो वहां से भी भाग गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी हमें मौका मिले भक्तों की संगत प्राप्त करने का, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। खास करके जब हमें उन भक्तों की संगत का मौका मिले जो बिल्कुल दृढ़ होकर गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी जी उपदेशन में इसमें कहते हैं कि जो भी हरि नाम का जप कर रहा है उसे हमें आदर देना चाहिए, पर संगत उनकी प्राप्त करनी चाहिए जो कि बिल्कुल दृढ़ होकर गुरु के आदेश के अनुसार नियमों का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी हरि नाम का उच्चारण करे उसे हम आदर देते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन व्यक्तियों की संगत रखनी चाहिए जो स्वयं दृढ़ होकर इस मार्ग में चल रहे हैं। और अगर हम उन भक्तों की संगत में रहेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक परिवर्तन कर सकेंगे। हरे कृष्ण।